नमस्कार और हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद बेहद जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, भारत के स्थानीय शासन मतलब पंचायती राज संस्थानों में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों EWRs जिन्हें कहते हैं, उनके सशक्तिकरण पर। ये वो महिलाएं हैं जो अपने गांव अपने समुदाय के विकास की बागडोर संभाल रही हैं या संभालने की कोशिश कर रही हैं। आप जानते ही हैं, भारत में ये जो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ वो एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम रहा है। आज देश में लगभग 14.5 लाख, सोचिए 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व की एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जैसा कि आज हम जिस गाइडबुक के अंशों को देख रहे हैं वो बताता है कि सिर्फ सीटें आरक्षित कर देना या चुनाव जीत जाना वो काफी नहीं होता। असली चुनौती तो है इन महिला प्रतिनिधियों को प्रभावी नेता बनाने में। इसके लिए लगातार साथ चाहिए, सही तरह के कौशल, उनकी क्षमता बढ़ाने वाले प्रशिक्षण और हाँ, एक मददगार माहौल, एक इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा मिशन है ये समझना कि इन महिला नेताओं को असल में सशक्त कैसे बनाया जाए, ताकि वे केवल नाम की प्रतिनिधि न रहें बल्कि सच में बदलाव लाने वाली ताकत बने। और देखिए, शोध भी यही कहता है कि जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो शासन बेहतर होता है, ज्यादा पारदर्शी बनता है, सबकी भागीदारी होती है और खासकर महिलाओं और बच्चों जैसे समूह जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं उनकी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि भाई, इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि महिलाएं अक्सर शासन में एक अलग नजरिया लाती हैं, ऐसी प्राथमिकताएं लेकर आती हैं जो शायद पहले नजरअंदाज की जाती रही हों, खासकर वो मुद्दे जो हाशिए पर रहने वाले समूहों और उनमें भी खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की जिंदगी से सीधे जुड़े हों।
बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सिर्फ अलग नजरिए की बात नहीं है, ये असल में प्रभाव की, इम्पैक्ट की बात है। जब महिला प्रतिनिधि सशक्त होती हैं, प्रभावी होती हैं, तो वे स्थानीय नीतियां बनाने में, सरकारी सेवाओं को गांव तक सही ढंग से पहुंचाने में और पूरी व्यवस्था को ज्यादा जवाबदेह बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इससे होता क्या है, इससे जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव और टिकाऊ विकास की रफ्तार तेज होती है। लेकिन हाँ, ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए एक सोचा समझा, एक व्यापक ढांचा चाहिए होता है। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो असल में कई रणनीतियों की बात करता है। देखिए, ये कोई एक जादुई समाधान नहीं है, बल्कि कई अलग अलग तरीकों का एक मिश्रण है। इसमें तकनीकी मदद भी शामिल है, सामाजिक सोच बदलने की कोशिश भी है, संस्थागत सुधार भी है और हाँ, राजनैतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि हमें सिर्फ प्रतिनिधित्व से आगे बढ़ना होगा, लगातार उनकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, लगातार।
शिक्षण, लीडरशिप एनहांसमेंट ट्रेनिंग, यहां फोकस सॉफ्ट स्किल्स पर होता है, जैसे बेहतर तरीके से बातचीत करना, मंच पर बोलना, मोल भाव करना और अगर कोई झगड़ा या मतभेद हो तो उसे सुलझाना। मकसद साफ है, उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ाना कि वे मीटिंगों में, सरकारी दफ्तरों में या ग्राम सभाओं में अपनी बात दमदार तरीके से रख सकें। इसे आप एक तरह से किसी बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी जैसा समझ सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ है शी रिप्रेजेंट्स अभियान,
शी रिप्रेजेंट्स कैंपेन।
इसका उद्देश्य है सफल महिला नेताओं की कहानियों को सामने लाना, उनको फैलाना, दूसरों तक पहुंचाना। जब नए चुनी गई प्रतिनिधि अपने जैसी ही सफल महिलाओं से मिलती हैं, उनकी कहानियां सुनती हैं, तो उनका नजरिया बदलता है। उन्हें लगता है कि अरे, अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इससे उनकी आकांक्षाएं बढ़ती हैं और वे खुद को एक नेता के रूप में देखने लगती है, वो पहचान बनती।
ये बहुत जरूरी है रोल मॉडल होना। एक और अहम प्रशिक्षण है महिला हितैषी ग्राम पंचायत प्रशिक्षण, वुमेन फ्रेंडली GP ट्रेनिंग। ये खास तौर पर इस बात पर ध्यान देता है कि शासन के हर काम में लैंगिक समानता का ध्यान कैसे रखा जाए। इसका लक्ष्य है ऐसी विकास योजनाएं बनाना जो महिलाओं की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें, साथ ही पंचायत के कामकाज को स्थानीय कृत सतत विकास लक्ष्यों, लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स LSDGs से जोड़ना। ये LSDGs क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र के जो बड़े विकास लक्ष्य हैं उन्हीं का हमारे गांव और पंचायत के स्तर का रूप है, जैसे गरीबी मिटाना, स्वास्थ्य सुधारना, साफ पानी देना वगैरह।
बिल्कुल,
और फिर है ग्राम विकास योजना प्रशिक्षण VDP ट्रेनिंग। पंचायतें गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं जिन्हें VDP कहते हैं। इस ट्रेनिंग में महिला प्रतिनिधियों को सिखाया जाता है कि गांव के संसाधनों का नक्शा कैसे बनाएं, सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण कैसे करें, सबकी भागीदारी से योजना कैसे बनाएं और फिर उसे ग्राम सभा में सबके सामने कैसे रखें, कैसे प्रस्तुत करें। इससे वे सिर्फ योजनाओं पर मोहर लगाने वाली नहीं रहती बल्कि उन्हें बनाने वाली बनती हैं। ये सहभागी शासन की नींव है असल में।
और आजकल के जमाने में एक और चीज बहुत जरूरी हो गई है, डिजिटल साक्षरता पहल, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स, मतलब मोबाइल ऐप चलाना, ई ग्राम स्वराज जैसे सरकारी ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करना और GPS जैसी तकनीकों को प्रशिक्षण।
हाँ, और ये डिजिटल साक्षरता आपको ये मतलब वैकल्पिक चीज नहीं रही, ये आधुनिक शासन चलाने के लिए अनिवार्य हो गई है, जरूरी है। इससे वह केवल महिला प्रतिनिधि तकनीकी रूप से सक्षम बनती हैं, बल्कि ये उस डिजिटल खाई को भी पाटता है जो अक्सर महिलाओं को पीछे छोड़ देती है। वे सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जानकारी हासिल कर सकती हैं और डेटा पर आधारित फैसले लेने में ज्यादा सहज हो पाती हैं। अच्छा, अब दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति पर आते हैं, यह है संस्थागत जुड़ाव और एकीकरण। इसका मतलब है कि महिला प्रतिनिधियों को अकेले में काम नहीं करना है बल्कि उन्हें मौजूदा सरकारी व्यवस्था से जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। पहला कदम है विभागीय जुड़ाव या डिपार्टमेंटल लिंकेजेस। महिला प्रतिनिधियों को सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और गांव के लोगों के बीच एक पुल की तरह बनाना। जब वे लोगों की समस्याएं विभागों तक और विभागों की योजनाएं लोगों तक पहुंचाती हैं तो इससे न केवल सरकारी तंत्र की उनकी समझ बढ़ती है बल्कि गांव में एक नेता के तौर पर उनकी पहचान और वैधता, लेजिटिमेसी भी मजबूत होती है।
ये तो बहुत अहम बात है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि किस काम के लिए किस दफ्तर जाना है। महिला प्रतिनिधि इसमें बहुत मददगार हो सकती हैं, लेकिन क्या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना इन महिला प्रतिनिधियों के लिए आसान होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या इसमें कुछ व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं?
आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चुनौतियां तो होती हैं। कभी अधिकारी सहयोग नहीं करते, कभी जानकारी नहीं देते, कभी उनको गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए स्रोत ब्लॉक अधिकारियों के साथ संयुक्त योजना, जॉइंट प्लानिंग विद ब्लॉक ऑफिशियल्स पर जोर देता है। जब महिला प्रतिनिधि और ब्लॉक स्तर के अधिकारी एक साथ बैठकर गांव की योजना पर चर्चा करते हैं तो इससे आपसी समझ बढ़ती है और संस्थागत तालमेल मजबूत होता है। इससे ये पक्का होता है कि भाई महिलाओं की आवाज और जरूरतें औपचारिक योजना प्रक्रिया का हिस्सा बने, न कि बस कागजों तक सीमित रह जाएं।
हाँ, ये विभागों के बीच की दीवारों को तोड़ने जैसा है।
और तीसरा पहलू है इंटरफेस बैठकों में भागीदारी, यानी पार्टिसिपेशन इन इंटरफेस मीटिंग्स। महिला प्रतिनिधियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर होने वाली औपचारिक बैठकों, खासकर शिकायत निवारण बैठकों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना। जब वे इन मंचों पर दिखती हैं, अपनी बात रखती हैं तो उनकी पहचान बनती है और उन्हें आत्मविश्वास मिलता है कि वे समुदाय की चिंताओं को बड़े अधिकारियों के सामने भी रख सकती हैं।
बिल्कुल, दृश्यता और भागीदारी दोनों जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरी रणनीति पर, जो समुदाय और जमीनी स्तर की कार्रवाई पर केंद्रित है। इसमें पहला है सामुदायिक जागरूकता अभियान, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स। अक्सर समाज में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर पुरानी सोच होती है, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। इन अभियानों और संवादों के जरिए उन धारणाओं को बदलने और उन नियमों को चुनौती देने की कोशिश की जाती है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लक्ष्य है कि पूरा समुदाय महिलाओं की सक्रिय भूमिका का समर्थन करें। सोच बदलना वाकई सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे जरूरी भी।
हाँ, और इसी से जुड़ा है दूसरा बिंदु, प्रलेखित सफलता की कहानियों के माध्यम से प्रेरणा, इंस्पिरेशन थ्रू डॉक्यूमेंटेड सक्सेस स्टोरीज। जब समुदाय के लोग ऑडियो, वीडियो या केस स्टडी के रूप में देखते हैं कि उनके बीच की ही कोई महिला प्रतिनिधि कितना अच्छा काम कर रही है, तो इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। ये कहानियां न केवल दूसरी महिला प्रतिनिधियों को प्रेरित करती हैं बल्कि समुदाय के पुरुषों की सोच बदलने में भी मदद करती है। देखा देखी सीखते हैं लोग।
और तीसरा है एक्सपोजर विजिट्स और पीयर लर्निंग। एक्सपोजर विजिट्स एंड पीयर लर्निंग, इसका मतलब है महिला प्रतिनिधियों को उन पंचायतों में ले जाना जहां बहुत अच्छा काम हो रहा हो, जिन्हें मॉडल पंचायतें कहते हैं। वहां वे अपनी आंखों से देखती हैं कि क्या संभव है, दूसरी महिला नेताओं से मिलती हैं, विचारों का आदान प्रदान करती हैं। इससे सीखने के साथ साथ आपस में एक मजबूत नेटवर्क और एकजुटता भी बनती है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है।
अब चौथी रणनीति पर आते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नेतृत्व को रोजमर्रा की जिंदगी यानी आजीविका और कल्याण से जोड़ती है। ये नेतृत्व को कोई हवा हवाई बात न रखकर एक ठोस जमीनी हकीकत बनाती है। इसके कई पहलू हैं जिन्हें हम कुछ मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है सीधे तौर पर आजीविका और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, जैसे महिला प्रतिनिधियों को उन्नत खेती के तरीके सिखाना, सब्जी उगाने की नई तकनीकें बताना या कोई और हुनर सिखाना। साथ ही स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs को बनाना और मजबूत करना। ये SHGs यानी स्वयं सहायता समूह आप जानते ही हैं, महिलाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं जो बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कर्ज देते हैं। और ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति देता है, जमीनी स्तर पर एक मजबूत महिला नेटवर्क बनाता है जो उनकी राजनीतिक आवाज को भी बल देता है।
इसी से जोड़ा है बाजार संपर्क और उद्यमिता समर्थन, यानी महिलाओं को उनकी उपज या बनाए गए सामान को बेचने में मदद करना, चाहे वो स्थानीय हाट हो, कोई प्रदर्शनी हो या आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो।
हाँ, यानी ये उन्हें केवल प्रतिनिधि नहीं बल्कि उद्यमी बनने में भी मदद करता है। और आर्थिक स्वतंत्रता तो राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुत मजबूत आधार तैयार करती है।
बिल्कुल। दूसरा समूह है सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। इसमें महिला प्रतिनिधियों को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वे गांव की अन्य महिलाओं को और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण करने में मदद करें, जैसे PM किसान सम्मान निधि है, मनरेगा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इन सब तक पहुंच बनाना। साथ ही सामाजिक सुरक्षा सुविधा के तहत वे जरूरतमंदों, खासकर अकेली महिलाओं, बुजुर्गों या विकलांग व्यक्तियों को राशन कार्ड बनवाने, पेंशन दिलवाने या विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करती हैं। यहाँ महिला प्रतिनिधि नागरिकों और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं, एक ब्रिज की तरह।
इसका मतलब है कि वे नेतृत्व को सीधे सेवा से जोड़ रही हैं, खासकर सबसे कमजोर समूहों की सेवा से। लेकिन क्या इन योजनाओं की प्रक्रिया जटिल नहीं होती? क्या महिला प्रतिनिधियों को इसमें मदद मिलती है, मतलब वो खुद ये सब कर पाती हैं?
हाँ, प्रक्रियाएं अक्सर जटिल होती हैं और यहीं पर वो प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग काम आता है जिसकी बात हमने पहले की थी। उन्हें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तीसरा समूह सामुदायिक कल्याण और पर्यावरण से जुड़ा है। इसमें पोषण आधारित और पशुधन पहल शामिल हैं, जैसे किचन गार्डन को बढ़ावा देना, मुर्गी पालन, बकरी पालन। इससे घर में पोषण की स्थिति सुधरती है और महिला प्रतिनिधि समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के संरक्षक के रूप में स्थापित होती हैं। फिर है संकट प्रबंधन और राहत प्रयास, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या कोई महामारी फैले तो उस समय राहत कार्यों में समन्वय करना।
हाँ, ये तो बिल्कुल दबाव में नेतृत्व दिखाने का मौका होता है।
बिल्कुल। और आखिर में पर्यावरण नेतृत्व पहल, जैसे बीज बॉल बांटना, पेड़ लगाना, पानी बचाने के लिए अभियान चलाना, ये दिखाता है कि महिला नेता केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय मुद्दों पर भी नेतृत्व कर सकती हैं। ये जमीनी स्तर पर जलवायु नेतृत्व को भी बढ़ावा देता है।
अरे वाह, ये तो रणनीतियों का एक पूरा ताना बाना है। सिद्धांत में ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन असल में जमीन पर ये कैसे काम करता है? क्या स्रोत हमें कुछ ठोस उदाहरण या सर्वोत्तम प्रथाएं बताता है, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज?
हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बेहतरीन प्रथाओं का जिक्र करता है, जैसे एंड टू एंड प्लानिंग इंटरफेस, जो योजना बनाने से लेकर उसे ऑनलाइन जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है, जिससे देरी और गलतियां कम होती हैं। दूसरा है सामुदायिक जुड़ाव के लिए GIS मैपिंग।
GIS आनी?
भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये नक्शों पर आधारित जानकारी होती है। ये नक्शे गांवों के संसाधनों को दिखाने का एक मजबूत दृश्य तरीका है, जो कम पढ़े लिखे लोगों को भी योजना में शामिल होने में मदद करते हैं। तीसरा, GPPFT मॉडल, ग्राम पंचायत योजना एवं सुविधा दल।
ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें योजना बनाने वाली टीम में न केवल पंचायत सदस्य बल्कि समुदाय के लोग, SHG सदस्य और संबंधित विभागों के कर्मचारी भी शामिल होते हैं, जिससे योजना ज्यादा समावेशी और व्यवहारिक बनती है। और चौथा, जिला स्तरीय लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां अलग अलग पंचायतों की महिला प्रतिनिधि और अन्य हितधारक मिलकर अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं।
लेकिन इन प्रथाओं को जीवंत बनाती हैं कहानियां। स्रोत में मियां राय सीबीओ अभिसरण का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। अभिसरण का मतलब है जब अलग अलग संस्थाएं जैसे पंचायती राज संस्थान यानी सरकारी ढांचा और समुदाय आधारित संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह या एनजीओज मिलकर काम करती हैं। झारखंड के अराजू पंचायत की दोधो मांझी की कहानी लेते हैं। दोधो जी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं जिन्हें बचपन से ही समाज ने नकारा और वे सरकारी व्यवस्था की नजरों में लगभग अदृश्य थे। उन्होंने कई बार आधार कार्ड और पेंशन पाने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे।
फिर क्या हुआ? कहानी में मोड़ कहाँ आया? कुछ तो हुआ होगा।
मोड़ आया एक टोला बैठक में, मतलब गाँव के एक हिस्से की बैठक थी। वहां ग्राम पंचायत हेल्प डेस्क के कैडर थी शिवानी दीदी। उन्होंने सरकार के आपके सरकार आपके द्वार शिविर के बारे में बताया। दोधो जी ने उनसे मदद मांगी। शिविर में जब बायोमेट्रिक मशीन दोधो जी की उंगलियों के निशान नहीं पढ़ पाई तो वो बहुत निराश हो गए। लेकिन इस बार शिवानी दीदी और नागरिक सहायता केंद्र एनएसके की टीम ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने दोधो जी को हौसला दिया, भावनात्मक सहारा दिया और अगले दिन आधार केंद्र ले जाने में मदद की। शिवानी दीदी खुद उनके साथ गई और इस बार आधार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया। आधार कार्ड बनने के बाद इसी GPHDNS के नेटवर्क ने दोधो जी का पेंशन का आवेदन जमा करवाने में मदद की और अंततः उन्हें मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिलने लगा।
ये कहानी दिखाती है कि कैसे पंचायत जिसने मंच दिया, CBO कैडर्स जिन्होंने मार्गदर्शन और फॉलो अप किया और प्रशासन जिसने शिविर लगाया कि बीच तालमेल ने सारी बाधाओं को दूर किया
और एक ऐसे व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जो शायद सबसे ज्यादा हाशिए पर था।
ये वाकई अभिसरण की ताकत का एक अद्भुत उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब अलग अलग कड़ियां जुड़ती हैं तो व्यवस्था ज्यादा मानवीय और प्रभावी बन जाती है। क्या इस तरह का अभिसरण आम है या ये कुछ विशेष मामलों में ही हो पाता है?
नहीं, ये मॉडल अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। स्रोत ग्राम पंचायत समन्वय समिति GPCC ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी उल्लेख करता है, जैसे झारखंड के रोले और कंजिया पंचायतों में। GPCC क्या है? ये एक मंच है जहां पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि समुदाय की समूह जैसे SHG फेडरेशन के लीडर और स्थानीय सरकारी कर्मचारी जैसे आंगनवाड़ी सेविका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोजगार सेवक नियमित रूप से मिलते हैं। इन बैठकों ने विभागों के बीच की दीवारों को गिराया है। स्थानीय स्तर पर पेंशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण जैसी सेवाओं को बेहतर बनाया है। गांव की समस्याओं जैसे स्कूल की मरम्मत हो या पानी की किल्लत, वो मिलकर हल की हैं और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। यह अभिसरण को संस्थागत रूप देने का एक तरीका है जिसने इन पंचायतों को शासन का मॉडल बना दिया है।
अच्छा, स्रोत में महिला प्रतिनिधियों द्वारा नेतृत्व के कुछ और उदाहरणों का भी जिक्र है, जैसे आपने बताया सीड बॉल पहल, ग्राम विकास योजना VDP तैयार करने में नेतृत्व लेना या खेती और पशुपालन के नए नए मॉडल अपनाना।
हाँ, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्थानीय कार्यों को बड़े लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है। जैसे हमने पहले जिक्र किया था स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य LSTGs। बिहार के बेगूसराय की कुमारी माधवी की कहानी लीजिए। उन्होंने 50-50 कृषि मत्स्य मॉडल अपनाया, यानी आधे खेत में खेती आधे में मछली पालन। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी जो LSTG 1 कोई गरीबी नहीं से जुड़ा है, बल्कि पानी का बेहतर प्रबंधन भी हुआ LSTG 4 जल पर्याप्त पंचायत, और महिला नेतृत्व को भी बढ़ावा मिला LSTG 9 महिला हितैषी पंचायत। इसी तरह राजस्थान के वासा पंचायत में GIS आधारित एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन INRM योजना बनाई गई। GIS नक्शों की मदद से बनी यह योजना न केवल समझने में आसान थी, बल्कि इसने योजना बनाने की प्रक्रिया को समावेशी बनाया। खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और गांव के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हुआ। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात साफ उभर कर आती है, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण कोई एक अकेली घटना नहीं, बल्कि एक बहुआयामी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ प्रतिनिधित्व या सीटें मिलने से आगे बढ़कर उनके कौशल निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें संस्थागत व्यवस्था से जोड़ने, समुदाय का समर्थन जुटाने और सबसे जरूरी, उनके नेतृत्व को आजीविका, कल्याण और पर्यावरण जैसे ठोस दिखने वाले परिणामों से जोड़ने की जरूरत है। ये केवल भागीदारी से आगे बढ़कर सक्रिय योगदान और वास्तविक नेतृत्व की ओर एक कदम है। स्रोत बार बार अभिसरण और सहयोग, यानी पंचायत, समुदाय आधारित संगठनों और दूसरे हितधारकों के बीच तालमेल के महत्व पर जोर देता है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में अलग अलग स्थानीय परिस्थितियों में इस तरह के सहयोग को प्रभावी ढंग से कैसे बनाए रखा जा सकता है और कैसे इसे और बढ़ाया जा सकता है। कैसे सुनिश्चित करें कि यह केवल ऊपर से थोपा गया आदेश न बनकर एक जीवंत जमीनी स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया बनी रहे, जो वास्तव में स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं से प्रेरित हो। हम इस विचार के साथ आपको यहीं छोड़ते हैं।